नादी नाद नहीं हुआ,
नहीं लास्ट के नहीं हुआ, दिनचर्या के बाद के सब
हाँ।
भी हैं।
ओके ओके ठीक है। ओके सो दिनचर्या में अभी तक क्या क्या पढ़ रहा है कोई मुझे बताएंगे तो प्लीज।
हाँ बिल्कुल, दिनचर्या में हमने
हाँ।
अभी तक ऑलमोस्ट करण जी ने लास्ट सेशन में फिनिश कर दिया था, और
हाँ
सभी में बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने सब कुछ हमें समझाया था कैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए यहाँ पे
हाँ
रहते
वही
हुए
वही
भी।
वही हम में से कोई समझाए कि क्या क्या समझे अभी तक, मैं बस वो पूछ रहा हूँ।
हाँ जी हाँ जी हाँ, एनीबडी कोई कोई बोलना चाहेगा? अतुल भाई, प्रमोद अंकल, शाबन, हमारे साथ सचिन और तेजल भी हैं न्यू जर्सी से, सचिन और तेजल, और साथ में दिया भी, तो फिर कोई और
ओके दिया भी है।
हाँ
ओके
दिया
फाइन
भी हैं
हाँ
हाँ शायद।
ठीक है। अतुल जी यदि आप बताएं क्या अभी तक दिनचर्या में हुआ।
जैसे कि नाम है दिनचर्या, तो सुबह से उठ के हमें क्या करना है उसकी बात हुई थी कि पहले उठ के देव दर्शन करने हैं, जैसे कि बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि की बात हुई थी। दर्शन करने का हेतु कि जैसे कि देव गुरु शास्त्र, अभी अमेरिका में देव दर्शन न हो सके तो देव शास्त्र जो घर में हुए उनके दर्शन करके पोताना त्रिकाल शुद्ध आत्मा, खुद का त्रिकाल शुद्ध आत्मा का दर्शन करना। फिर उठ के बाद में स्नान करके शुद्ध कपड़ा पहन के, यानी के देव दर्शन करने की बात की थी।
इसके
फिर वो
आगे
प्रमाद
प्रतीक
का दोष।
जी यदि बताए तो
हाँ
प्रतीक जी ने क्या प्रतीक जी ने क्या
हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी
हाँ प्रतीक जी इसके आगे का क्या करना है।
हाँ हाँ उसके आगे वो बताया कि ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, क्यों हमें ऐसी दिनचर्या को फॉलो करना चाहिए, कि हम अच्छा अब तक जो कर रहे हैं और ऐसी दिनचर्या हमारी लाइफ में क्या लाएगी, क्या एडअप करेगी, क्या हमें इससे फायदा होगा, उसकी बात हुई थी।
क्या लाएगी
हाँ
जी,
उससे हम
क्या
क्या
लाएगी ये
जैसे
दिनचर्या।
अतुल जी ने बताया कि हमारी आंतरिक और आंतरिक शुद्धा शुद्ध शुद्धता उससे आएगी, बाहर की शुद्धता से अंतर की शुद्धता भी आएगी, वो हमारे लेवल पे वो हम करण जी ने समझाया था कि बाहर की शुद्धता से आंतरिक शुद्धता का क्या रिलेशन है और कैसे आ सकती है, और उसका उन्होंने बाहर वो इम्पोर्टेंस दिया था, तो
ओके फाइन फाइन फाइन
मन की शुद्धता
ओके।
कैसे आती है तो वो
तो
सब।
इन शॉर्ट यदि मैं उसी बात को रिपीट करूं तो सबसे पहले हमको प्रातः काल इन द मॉर्निंग हमको उठना है, उठकर पंच परमेष्ठी का स्मरण करना है, उसके बाद काय शुद्धि करनी है यानी कि स्नान नहाना और इत्यादि इत्यादि काय शुद्धि, उसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर या तो यदि पॉसिबल है तो जिन मंदिर जाना है भगवान के मंदिर पूजनार्थ, और यदि वो पॉसिबल नहीं है जैसे कि अमेरिका में तो फिर आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्या करते हैं यदि मंदिर पॉसिबल नहीं। हाँ
में जिनवाणी विराजमान की है तो वहाँ हम दर्शन करते हैं।
ओके घर पर जिनवाणी के हाँ ओके बराबर, तो घर पर जो जिनवाणी रखी है यानी जैसा भी है, हमारा मुख्य उद्देश्य है हमारे देव शास्त्र गुरु इनका स्मरण हो जावे, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है, तो फिर हम ये करेंगे। तत्पश्चात ऐसा सब क्यों करना, क्योंकि इससे अंतरंग और बहिरंग शुद्धता की बात यहाँ पर आती है, तो क्या कैसे रिलेशनशिप है यदि बोलेंगे अंतरंग और बहिरंग शुद्धता से, तो कैसे बहिरंग शुद्धता से अंतरंग शुद्धता आएगी।
अभी कैंज ने बताया था कि हमने जब तक जहाँ तक समझा है, मैंने जब जहाँ तक पकड़ा है
हाँ हाँ
वैसे
हाँ हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल
हाँ
बिल्कुल
हाँ बाहरी शुद्धता से अभी हमारा जो लेवल है वहाँ पे हमें जरूरी है कि बाहर की शुद्धता का हमें निमित्त मिले अपनी अंतरंग शुद्धता के लिए। और अब जब तक उस लेवल पे हम ना पहुंचे कि तब तक हमें बाहर की शुद्धता की भी कोई जरूरत नहीं है, तब तक हमें इस शुद्धता का भी आलम्बन लेना होगा, बाहर की शुद्धता का, अपनी अंतरंग शुद्धता को प्रकट करने के लिए।
तो बाहर की शुद्धता मतलब क्या, वही पूछ रहा हूँ। बाहर की शुद्धता
बाहर
मतलब
की
क्या?
शुद्धता मतलब जैसे
ऋण
बताया
की
था बहुत,
शुद्धता की बात कर
हाँ
रहे हैं। हाँ,
टूल
आप
का,
लोग इतने
हाँ
सारे लोग हो सभी क्लास में, आप लोग सब
हाँ
पार्टिसिपेट करेंगे तो
हाँ हाँ
अच्छा
बिल्कुल
लगेगा।
बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ हाँ
नियति
प्रमोद
बहन
अंकल
आप भी
बताइए।
हो क्या?
हाँ वो म्यूट पे थी
हाँ प्रमोद
शायद।
अंकल आप बताइए।
हाँ
ओके 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 ठीक है। हाँ प्रमोद अंकल आप बताइए प्लीज।
हाँ वो बाह्य शुद्धि की बात करते हैं तो वो शरीर की शुद्धि की बात होती है, तो हमें स्नान करना है, मंजन करना है, आदि स्नान वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और जब आंतरिक
हाँ
शुद्धि की बात कर रहे हैं तो वो राग द्वेष मोह वगैरह विकारी भावों की बात होती है, तो उनको
बिल्कुल
भी।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है, हमारी जो देह है, ये शरीर है। हाँ बोलना चाह रहे हैं आप?
हाँ नियति बोल रही हूँ, जय जिनेन्द्र भैया।
जय
मेरी
सुरेंद्र जय सुरेंद्र।
मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं लाती हूँ, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग बाह्य शुद्धि होना चाहिए, बराबर है, लेकिन जरूरत नहीं है कि एवरीडे स्नान करना चाहिए। हाँ पूजा पाठ करते हैं तो क्लीन होना चाहिए, मतलब स्नान करके बैठना चाहिए, वो बराबर है, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं पौषध उपवास बहुत करती हूँ मेरे घर में। हमारे घर में इंडिया जैसे नहीं होता है, लेकिन मैं अपने ऊपर इतना भार नहीं देती कि मुझे वो दिन मंजन करना चाहिए, वो दिन मुझे स्नान करना चाहिए। तो मेरे मेरे अपने समझ में भी नहीं आया था जब करण जी ने भी ये बताया था कि स्नान इज मस्ट, ब्रशिंग इज मस्ट, यू नो, क्योंकि जैसे हम खुद हाँ ऐसे डर्टी नहीं होते जैसे इंडिया में स्वेटिंग होता है और डस्ट आती है। तो मेरे हिसाब से नॉट नेसेसरी कि एवरीडे स्नान और मंजन करना चाहिए।
ओके फाइन। और किसी का सेम ओपिनियन? और कौन कौन अग्री करते हैं नेति बहन की बात से?
स्नान नहीं, स्नान रोज नहीं करना, वो बात से
हाँ
तो एग्री करते हैं, लेकिन वो क्योंकि
क्योंकि
यहाँ इससे शरीर की शुद्धि रहती है, बिकॉज कभी भी पसीना नहीं होता है।
ओके
और जैसे इंडिया में इतनी गर्दी होती है, सबको टच होता है, किसी को टच भी नहीं होता।
यस 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 ओके फाइन। देखिए एक्चुअली ये जो आपका आप लोगों का व्यू पॉइंट है, ये एक तरीके से प्रैक्टिकली यदि आप ऐसे बोल रहे हो तो हम देखते हैं तो ऐसा हमें कुछ दिखता नहीं है। बट नेचर ऑफ बॉडी, यदि हम बॉडी के नेचर की बात करें तो बॉडी से हर टाइम, एवरी टाइम हमारी बॉडी से, इसमें 9 मल द्वार बोले जाते हैं, वो तो पता होगा ना आपको।
हाँ
बॉडी में 9 मल द्वार यानी 9 जगह से मल निकलता है। लाइक हमारी 2 आँख है तो आँखों से गंदगी निकलती है, नाक से गंदगी निकलती है, मुंह के अंदर भी गंदगी होती है, देन कान और हमारे मलमूत्र के स्थान। ओके तो इस देह से गोइंग यानी कि इस देह का यदि हम नेचर देखें तो 24 आवर्स, जो 9 हमारे मल द्वार है, उनसे 9 के 9 मल द्वार से हमेशा मल निकलता रहता है, हमेशा। ओके ये नेचर है, यानी कि अब हमको पता पड़े ना पड़े, लेकिन बॉडी का नेचर ऐसा है कि इससे हमेशा इतना मल निकलता रहता है। तो हम जब सुबह सुबह जाते हैं भगवान के पास, तो हम रात सोए हुए होते हैं इत्यादि इत्यादि, तो रात भर का जो लाइक दिन भर तो हमें पता नहीं पड़ता, हम काम करते रहते हैं तो मल इतना इकट्ठा जमा नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो रात भर जब हम सोए हुए रहते हैं तो वहां पर काफी जल जमा हो जाता है। इसके लिए कहा जाता है कि हमें प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनकर मंदिर जाना चाहिए। इसका यानी लॉजिक ये है कि गंदगी दिख नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं कि गंदगी नहीं है। सिंपली देखिए, इसको हम ऐसे ले सकते हैं जैसे कि जस्ट पुराने राजा लोग होते थे, उनके दरबार में जब कुछ बैठक वगैरह होती थी तो लोग कैसे जाते होंगे भेंट लेकर, यदि राजा के दरबार पर लोग जाएंगे तो यानी आप खुद ही सोच लीजिए कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे,
नहा धो के स्वच्छ होके ही जाएंगे।
हाँ, प्रेजेंटेबल मैनर में जाएंगे कि हाँ आप किसी ऑस्पिशियस ओकेशन पर आए हैं, कि आप इसके यहाँ पार्टी में आए हैं, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ आप उनकी पार्टी में एक्चुअली पार्टिसिपेट करने आए हैं, राइट? अग्री या नॉट? उसी प्रकार जब हमारे तीन लोग के भगवान हैं, ओके देखिए आपका एक जो पॉइंट आप बोल रहे हैं कि स्नान करना जरूरी नहीं है, तो सेम पॉइंट ये हमारे रत्नकरण शाकाचार में भी उठाया और भी चरणानियों के ग्रंथों में उठाया है। वहां क्या बोलते हैं कि हमारे मुनिराज का एक मूल गुण होता है, आप लोगों को पता हो कि हमारे मुनिराज कभी स्नान नहीं करते हैं। जिनके ना नोन ना धंत धोवन, सुना है छेड़ाला की लाइन है, जो ना तो जिनके स्नान होता है ना ही जिनके मंजन करना ब्रश करना होता है, राइट? पक्का क्लियर ना? ये हमको पता है हमारे मुनिराज का स्वरूप, सब लोग समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ या मैं थोड़े धीरे धीरे बोलू? तो रत्नकरण शाकाचार्य जी ने प्लस और भी चरणानियों के शास्त्रों में ये प्रश्न उठाया कि जब हमारे मुनिराज का मूल गुण है, यानी कि उनका एक आपने वो बताया बेसिक उनकी जो वो है कि वो स्नान नहीं करते, उनका एक गुण है, अच्छी बात है, तो फिर गृहस्थ स्नान ना करे तो क्या प्रॉब्लम है? बताइए, जब मुनिराज का स्नान ना करना वो गुण है तो गृहस्थ यानी कि हम सभी स्नान ना करें उसमें क्या प्रॉब्लम है?
अभी हमारा हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो वो हमार वो तो अलग हो गया ना हमारा और मुनिराज का,
मतलब
हमारी आंतरिक शुद्धि उतनी होती है ना,
हम थोड़ा संसारी भी है,
हम संसारी जीव है तो ठीक है, लेकिन जो डाउट है वो ये है कि आप जब मुनिराजों की बात करते हो तब तो बोलते हो कि उनका नहीं नहाना मूल गुण है, और जब आप अपनी बात करते हो तो बोलते हो आपको नहाना चाहिए, तो कॉन्ट्राडिक्टिंग ही हो गया
कि हम अभी इसका लोगों के बीच में रहते हैं और हमारा वी अफेक्ट एवरीबॉडी अराउंड अस, सो
जी अब देखिए हाँ एग्जैक्टली द पॉइंट इज, यदि आप अपने आप को मुनिराज से कंपेयर करते हो तो वो उनका नहाने का कारण ये नहीं है कि उनकी देह की शुद्धि बढ़ गई है, उनका ना नहाने का कारण ये, अच्छा हमारे मुनिराज क्यों नहीं नहाते?
क्योंकि उनको देह के प्रति
एनीबॉडी क्यों नहीं नहाते हमारे मुनिराज,
उनको नहाने की इच्छा ही नहीं होती है,
उनका विकल्प ही नहीं होता शायद,
क्यों
हिंसा का महाव्रत सब लिए है ना,
क्योंकि देह की शुद्धता
महाव्रत कर लिए है तो ना, महाव्रत में तो कोई भी ऐसा महाव्रत नहीं है, अनोन महाव्रत यानी कि अहिंसा है अचौर्य है, लेकिन बिना नहाने वाला कोई महाव्रत नहीं है,
क्योंकि वो देह की शुद्धता में धर्म नहीं समझते इसलिए।
हाँ आप बहुत क्लोज आ गए हैं, इसको और में बोले तो क्या बोलेंगे, तो देने के प्रति राग छूट गया है,
बराबर
यस और नो? मुनिराज इसलिए नहीं नहाते कि उनकी बॉडी बहुत शुद्ध है, मुनिराज इसलिए नहीं नहाते, इसलिए नहाना यानी कि नहीं छोड़ा है कि उनकी बॉडी बहुत शुद्ध है, उन्होंने नहाना इसलिए छोड़ा क्योंकि उनको नहाने का विकल्प ही नहीं आता, उनको इस देह से इतना मतलब ही नहीं है कि मैं इसको संवारूं, सजाऊं, कुछ करूं। तो मुनिराज का नहीं नहाना ये देह की शुद्धता का या देह का शुद्ध होने को इंडिकेट नहीं कर रहा है, प्याज का नहीं नहाना इंडिकेट कर रहा है कि उनका उतना राग कम हो गया है। अब यदि आपका इस जाति का राग कम नहीं हुआ है और यदि आप वैसा आचरण करोगे तो सबसे पहले तो आपने इसको स्वच्छंदता से पकड़ा, क्या कि हमें नहाने में आलस आएगा तो हम क्या बोलते कि मुनिराज नहीं नहाते तो मैं भी नहीं नहाता, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा ना कि मुनिराज मुनिराज यानी कि जो नहाने का संबंध है वो सिर्फ इसलिए है कि हमारी देह का जो नेचर है ये बहुत ज्यादा हर टाइम ये बहुत अशुद्ध होता जाता है। तो हम जब भगवान के पास जाते हैं तो हम ये करते हैं कि भैया भगवान तीन लोग के परमात्मा, उनके बारे में अशुद्धता लेकर जाऊं तो ये तो बहुत बड़ी अभिनय होगी, इसके लिए मैं शुद्धता से ना मात्र नहाकर बल्कि शुद्ध पहनकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर मैं भगवान के पास जाता हूँ।
यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है अनुभव जी।
हाँ हाँ बोलिए बिल्कुल।
मुनिराज को भी उतने ही नॉर्मल द्वार ही होंगे हमारी तरह,
बराबर बराबर
वो भी भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, तो उनको
बराबर
के प्रति राग तो नहीं है, लेकिन फिर वहाँ अभिनय का नहीं होगा कि वो भी जाते हैं दर्शन का?
हाँ देखिए
भाष्य शुद्ध है।
हाँ एकदम बराबर है, एकदम बराबर है। अब आपका प्रश्न जो है नौ ये अब देह की वो एक अलग तरीके से जाता है। अब आप ये बोल रहे हैं कि हम मंदिर जाते हैं तो हमको नहाकर जाना चाहिए, अब मुनिराज भी मंदिर जा रहे हैं तो वो नहाकर क्यों नहीं जा रहे हैं? राइट, यही प्रश्न है आपका।
राइट
हाँ बराबर। तो इसका सोल्यूशन इज फर्स्टली तो मुनिराज एकदम नग्न है, राइट एकदम नग्न है, तो सबसे पहले उनकी देह पर जो मन आता है वो अपने आप आकर बहकर चला जाता है, रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, पहली बात। पहली बात। दूसरी बात, उनकी देह उनके तप से अपने आप ही उनके तप के कारण शुद्ध हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो इस कारण मुनिराज की देह को हम इस अपेक्षा से कहा जाता है कि वो तप में लीन है और उनके मल के कहीं रुकने का ठहरने का अवकाश नहीं है। तो एक तो वो स्वयं के तप में लीन है, तो एक तो तप के कारण कभी उनकी देह अपवित्र नहीं होती और दूसरा मल के ठहरने का उनकी देह में अवकाश नहीं है, कोई यानी कि उधर पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं बनती कि मल उनकी देह पर ठहरे, इस कारण उनकी देह को शुद्ध कहा जाता है। इसके लिए यदि वो भगवान के पास जाएंगे तो अभिनय का चिन्ह नहीं बनता। ओके ठीक है, हम वापस दिनचर्या पर आते हैं। तो हम भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए हमें सुबह और भगवान के पूजन इत्यादि करना चाहिए। तो अब हम दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो हमारी दिनचर्या होगी डेली की, सुबह उठना, सफाई करना शरीर की, एंड देन भगवान के पास जाकर अपने भावों को अच्छे कर भगवान का गुणगान करना। अब नाउ यहाँ पर क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, हम भगवान के पास क्यों जाते हैं, राइट हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि भगवान के पास जाना तो ये भगवान के दर्शन आदि ये सब क्या है, ये करना है कि करना नहीं है, हमारी दिनचर्या में होना चाहिए, ठीक है ये हमारी दिनचर्या के पार्ट है, ओके। बट द क्वेश्चन इज कि हमको भगवान के दर्शन करना है कि नहीं करना है, ये दर्शन का भाव क्या है, दर्शन का भाव बेसिकली क्वेश्चन इज दर्शन का भाव अच्छा है या बुरा है?
जब तक हमें अपने त्रिकाशुद्ध आत्मा का दर्शन न होवे तब तक सच्चे देव गुरु शास्त्र का दर्शन निमित्त रूप से हमें लाभदायी होता है, इसके लिए करना ही चाहिए।
तो यदि हम सच्चे त्रिकाली जो हमारा भगवान आत्मा है उसके जब तक दर्शन ना करें, तो यानी कि मैं उसके दर्शन के लिए पुरुषार्थ ना करूं, तो इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट उपाय है कि मैं भगवान के पास जाकर बैठ जाऊं। ऐसा है कि यानी कि जब तक मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं सम्यक दर्शन नहीं करता हूं, तो मैं भगवान के पास जाकर बैठ जाता हूं। ऐसा है?
नहीं नहीं, सब्स्टिट्यूट जैसे नहीं है, सब्स्टिट्यूट
हाँ
नहीं है, लेकिन वो हमारे त्रिकाल शुद्ध आत्मा का हमें दर्शन नहीं हुआ है। नमो सर्व सिद्धानम अभी वही, तो पहले तो देव गुरु शास्त्र होते उनके उनको देख के हमें भी ऐसे भाव होते हैं कि हमारा भी सही आत्मा है, और उन्होंने जैसे प्राप्ति की वैसे हमें भी प्राप्ति करनी है।
बराबर बराबर, ये हमने वही हमने दिनचर्या में यही पढ़ा कि हम भगवान के पास जाते हैं और हमारे भाव अच्छे होते हैं, अंतरंग शुद्धि होती है, राइट? हाँ कि ना, सब लोग समझते हैं ना?
हाँ जी।
किसी को अभी तक कोई प्रश्न, कुछ भी प्रश्न प्लीज पूछ लीजिए।
एक्चुअली आप ही प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि हमारे आंतरी आ जाते हैं।
अरे अच्छा, तो हम अंतरंग पर, अंतरंग शुद्धता पर थे। मैंने पूछा था कि भगवान के दर्शन हम करते हैं तो ये वाला भाव क्या है, यानी कि कैसा है, करने योग्य है कि नहीं है। तो मेरा वही पूछना है कि हम भगवान के दर्शन करते हैं तो दर्शन करने योग्य है कि नहीं है।
बिल्कुल करने
योग्य है, योग्य है।
भगवान के दर्शन करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए?
करने चाहिए,
करने चाहिए। बराबर, भगवान के दर्शन करने का भाव अच्छा है कि नहीं है?
अच्छा है।
अच्छा है, एक्सीलेंट दिया। भगवान के दर्शन करने का भाव अच्छा है, बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि भगवान के दर्शन, हाँ
हाँ दिया शायद बोल
भगवान
क्या भी है
हमारा, हाँ वो हाँ, तो दिया। तो मेरा क्वेश्चन है कि भगवान के दर्शन करने का भाव अच्छा है, एकदम सही बात। तो भगवान के दर्शन करने वाले भाव से हमारा क्या हित होगा, हमें क्या अच्छा मिलेगा?
हमें रियल हैप्पीनेस मिलेगी।
अच्छा, हाउ?
सम्यक दर्शन।
ओके, तो भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन मिलेगा। आप सब दिया से अग्री? हाँ कि ना?
उनके दर्शन कर, जब निज का दर्शन करेंगे तो हमें सम्यक दर्शन होगा।
बराबर, तो मेरा सिंपल यही क्वेश्चन है कि भगवान के दर्शन करने का भाव क्या है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, इसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे?
अच्छा भी नहीं,
शुभ है, शुभ है, शुभ और
शुभ है। ओके एक्सीलेंट, तो तीन प्रकार के भाव होते हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध, करेक्ट। हम अंतरंग शुद्धि की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। हमने बहिरंग शुद्धि क्या बोला, देह की शुद्धि, और हम अंतरंग शुद्धि पर क्या है, भगवान आदि के दर्शन करने वाले भाव। ओके, नाउ भगवान के दर्शन आदि के भाव, स्वाध्याय आदि के भाव, ये कौन से भाव हुए, शुभ भाव हुए। अब ये बताइए कि भगवान के दर्शन करने का जो भाव है ये मेरे लिए हितकारी है कि नहीं है, मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है?
हितकारी है।
हितकारी है, अच्छा। तो एक बात मुझे बताइए कि आपको हम पहले कितने भवों से भगवान के दर्शन करते आ रहे होंगे?
अनंत काल से।
इसी भव में पहली बार भगवान से मिले हम, कि पहले कभी और भी मिले होंगे?
हमारे लिए हितकारी तो सिर्फ हमारे त्रिका शुद्ध आत्मा।
नहीं नहीं नहीं, वो एकदम बराबर है आपकी बात, हम अपने प्रश्न पे डेविएट नहीं होते। मेरा प्रश्न है कि भगवान हमारे लिए हितकारी है कि नहीं है, पहली बात। तो आपने बोला है
हितकारी है, उन्होंने मार्ग मोक्ष मार्ग बताया है, उस मार्ग पर हम चल, हितकारी तो है ही।
भगवान के दर्शन का भाव हमारे लिए हितकारी है कि नहीं है?
वो शुभ भाव है, और
शुभ
भाव है ही है, लेकिन उपाधि।
अच्छा, तो अब वो हितकारी कैसे हो सकता है? ही है। और किसी का कोई ओपिनियन? प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए।
हमें भगवान के अहोभाव होता है, इसलिए दर्शन करने के लिए जाते हैं।
यहाँ पे ये भी कह सकते हैं अनुभव जी कि अभी हमारा मन इतना चंचल है कि अशुभ भाव में ना चला जाए, इसीलिए हमें शुभ भाव में उसको परो उसको उसको एंगेज करे तो उतना हमारे लिए भी फायदा कारक है। इस तरीके से वो हितकारक हैं।
एक्सीलेंट। तो मेरा क्वेश्चन वापस वहीं पर आता है कि नमुक यानी भगवान के दर्शन का भाव हितकारक है कि नहीं है? आप इस तरीके से हितकारक है, उस तरीके से हितकारक है, ऐसा ना बोलकर एक जवाब दीजिए, हितकारक है कि नहीं है हमारे लिए? हितकारक है कि नहीं है
हमारे लिए? हितकारक है क्योंकि अभी तक हमें सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, इसलिए।
हाँ, तो भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन मिल जाएगा?
नहीं, एक्चुअली भगवान के दर्शन से हम
तो फिर भगवान
को ट्राई कर सकते हैं
देखने का ट्राई कर सकते हैं। और हमने पिछले भवों में हमें भी नहीं पता कितनी बार भगवान के दर्शन किए होंगे, राइट?
हाँ,
तो फिर अभी तक तो कुछ काम बना नहीं,
क्योंकि हम वहाँ पे अटक गए दर्शन में ही, इसलिए काम कुछ हुआ नहीं।
तो वही मैं पूछ रहा हूँ, भगवान के दर्शन का भाव हितकारी है कि नहीं है?
हाँ नहीं, एक दोनों
पर्सपेक्टिव से देखा जाए, उस पर्सपेक्टिव से हितकारी है, और कौन से पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उस कारण से हितकारी नहीं है।
देखिए, जब हम बात करते हैं हमारे लिए, तो पर्सपेक्टिव होता है मेरे लिए। ओके, नाउ मेरा क्या एम है, मुझे क्या चाहिए?
सम्यक दर्शन।
मुझे सुख चाहिए, मुझे सुखी होना है, मुझे आत्मा नहीं पता, मुझे देव शास्त्र गुरु कुछ भी नहीं पता, मुझे सिर्फ सुखी होना है, क्योंकि इस संसार में बहुत दुख है। ठीक है, मैं यहाँ दुखी होता हूँ, मुझे आकुलता होती है, इसलिए मुझे सुखी होना है। तो मेरा, जब मैं बात करूंगा मेरे लिए ये कैसा है, तो मैं ये देखूंगा कि ये मेरे सुख में क्या हेल्प कर रहा है। ओके, तो अब बताइए, आपके लिए भगवान के दर्शन का भाव जो हमारी दिनचर्या में डेली आता है, ये हितकारी है कि नहीं है?
हितकारी है।
हितकारी है। ओके, और किसी का कोई ओपिनियन?
जिस तरीके से हमने तीर्थंकर भगवान को हितोपदेशी कहा है, उसी एंगल से ये भाव भी हितकारी है।
ठीक है, और किस एंगल से हितकारी नहीं है फिर?
उस एंगल में अटक जाए तो फिर वो हितकारी नहीं है।
ओके, फाइन। और किसी के पास कोई और उत्तर? देखिए, एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं आज से पाप स्टार्ट करूंगा। हमारा जो बालपोत पाठमाला भाग दो में 5 पाप वाला पाठ है ना, मैं उसका बेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो जस्ट आई एम आस्किंग कि भगवान के दर्शन का भाव हितकारी है कि नहीं है? मेरे सुख में भगवान के दर्शन का भाव हितकारी है कि नहीं है?
हितकारी है, क्योंकि हमें शुभ भाव होते तो पुण्य बंद होता है, तो नेक्स्ट भाव में हमें जिनवानी ऐसे मिलती रहेगी, भगवान के दर्शन होते रहेंगे, तो आगे चल के,
यानी कि हमारी पहले की प्लानिंग ये है कि हमको अभी कुछ नहीं करना है, हमको अगले भाव में कुछ करना है, इसलिए हम अभी शुभ भाव कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे।
नहीं नहीं,
हमारी इनिशियल प्लानिंग ये है क्या?
प्रयत्न तो करना ही है।
कब? इस भाव में, अगले भाव में? अभी पुण्य इकट्ठा करते हैं, बाद में उसका प्रयत्न करेंगे। बोलिए बोलिए।
हमने बहुत बोल दिया अनुभव जी, आप बोलिए, आप क्लेरिफाई कीजिए।
और किसी को कुछ बोलना है? ओके ठीक है, चलिए।
तरफ से कुछ इनपुट नहीं आया, नहीं थी बहन, आपको कुछ बोलना हो
प्लीज।
बराबर है अभी, चलो मालूम है हितकारी है, लेकिन आगे भी गए थे तो वहाँ भी कुछ किया नहीं, तो लाइव मतलब हमने ओमकार ध्वनि भी सुनी है तो वहाँ भी लगा हितकारी है, तो कुछ हुआ नहीं, तो हितकारी मतलब क्या, वो मे भी हम समझ नहीं पाए अभी तक।
हाँ, हितकारी मतलब क्या, ये हमें सुखी करता है?
नहीं ऐसे
पोटेंशियल है क्या इसमें, क्या इसमें पोटेंशियल है मुझे सुखी करने की?
हाँ,
मुझे भगवान के दर्शन करना है, इस भाव में क्या पोटेंशियल है कि मुझे सुखी कर दे?
हाँ वही,
संपूर्ण सुख तो नहीं मिलने वाला है ना।
अच्छा, तो पार्शियल सुख मिलता भगवान के दर्शन से?
नहीं,
संपूर्ण को मिक्स साइड रखते हैं, पार्शियल मिलेगा।
पार्शियल मिलता तो वो सम्यक दर्शन हो गया।
हमारा स्वरूप का चिंतन करना है, उसके सुख मिलेगा, उससे तो मिलेगा नहीं, मगर उसने अतुल भाई ने बताया कि उसने जो रास्ता बताया है हम उसके जाएंगे, तो उसके दर्शन करके अपना ही स्वरूप का चिंतन तो करना है, और बाद में ही हम, इसलिए थोड़ा
देखिए हम लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, हमें समझते हैं भगवान के दर्शन इसलिए करना क्योंकि उससे हमें सुख मिलेगा। अब दो मिनट जस्ट थिंक कि हम भगवान के दर्शन क्यों करते हैं। भगवान को हितोपदेश ही बोला है, राइट? भगवान हितोपदेशी है, हमारे हित का उपदेश देते हैं, सही है? सब अग्री करते हैं भगवान है हितोपदेशी, वो हमारे अच्छे के लिए कि मैं कैसे सुख प्राप्त करूँ उसका उपदेश देते हैं। तो भगवान का हित उपदेश सिर्फ उतना ही, भगवान का उपकार सिर्फ उतना ही है कि उन्होंने मुझे उपदेश दिया। अब यदि मैंने भगवान के उपदेश को जैसा उपदेश था वैसा नहीं किया, तो ना तो भगवान मेरे लिए हितकारी साबित होंगे, यानी ना तो भगवान मेरे लिए हितकारी साबित होंगे ना उनका उपदेश। इतने सारे जीव हैं इस लोक में, लाइक वर्ल्ड में, ठीक है, हर कोई तो भगवान की बात सुनता नहीं है, राइट? तो भगवान के सबके लिए हितोपदेश है? भगवान क्या सबके लिए हितोपदेश है?
हाँ,
जो ग्रहण करेगा उसके लिए।
एग्जैक्टली, भगवान हितोपदेशी है, लेकिन जो पहले भगवान के पास आएगा कि भैया कुछ हित की बात बताओ, तब उसको बताएंगे ना भगवान। तो भगवान हितोपदेशी उस प्रत्येक जीव के लिए है जिसको सुख पाने की इच्छा है। अब मुझे सुख पाना है कि नहीं पाना है? हाँ, मुझे सुख पाना है। तो नाउ भगवान ये कहते हैं कि सुख का मार्ग ये है, तो अब मैंने देखा कि हाँ, अरे भगवान आपने जो सुख का मार्ग बोला ये तो सही में सुख का मार्ग है, तो मैंने उसको थोड़ा सा फॉलो किया और मुझे सही में सुख मिला, मुझे सम्यक की प्राप्ति हुई, तब मुझे बहुमान आता है कि अहो भगवान आप धन्य हो कि आपने मुझे सुख का मार्ग बता दिया। देखिए, काम पूरा सुख का मैंने किया, भगवान ने मुझे मार्ग बताया था, चला मैं, फॉलो मैंने किया और मुझे सुख मिला। नाउ यदि मैं बोलूं कि मैंने खुद से अपने आप से सुख प्राप्त किया है, तो फिर ये भगवान की अभिनय हो गई, क्योंकि भगवान ने मार्ग बताया था और मैंने बोला कि नहीं नहीं ये तो मैंने अपने खुद के बलबूते पर किया है, मैंने खुद अकेले पर किया है, तो ये होगी भगवान की अभिनय। तो जब इस जीव सुख प्राप्त होता है, तब इसको स्वयं भी अपने आप भगवान के भक्ति का दर्शन का भाव आता है कि अहो भगवान आपने मुझे ये मार्ग बता दिया। इसके लिए इस जीव के दर्शन होता है। आपको एक बात पता होगी, शायद गुरुदेव श्री प्रवचन में बोलते हैं, सच्चा भगवान का दर्शन सम्यक दृष्टि को होता है, सुना है कभी?
हाँ
जी,
हाँ।
मतलब क्या हुआ इसका, मतलब क्या हुआ, मतलब हम जो दर्शन करते हैं वो झूठा दर्शन करते हैं?
नहीं, वो सच्चे समझ,
हम जो दर्शन करते हैं वो झूठा दर्शन करते हैं?
नहीं, हम दर्शन करते हैं वो पाने के लिए दर्शन करते हैं, जिन्होंने पा लिया है उनको।
यदि हमने ऐसा सोचा कि दर्शन, हाँ बोलिए बोलिए,
हाँ
बोलिए बोलिए,
जब सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि पा लेता है तब उससे अहोभाव होता है, क्योंकि जो बात बताई थी वैसी ही बात सम्यक दृष्टि ने भी देख ली, तो वो ग्रहण ऐसे ही किया जैसे बताया, और उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो खुद ने किया, तो अहोभाव आके उसके फिर सच्चे दर्शन इसलिए होते क्योंकि वो कनेक्शन हो गया उनका और सम्यक दृष्टि।
हाँ, उनको उनको भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा हो गई कि हाँ जो भगवान बोल रहे हैं वो ही सत्य है, तो इसलिए उनको सच्चा दर्शन होता है, राइट? आप यही बोल रहे हो ना?
हाँ जी, हाँ जी,
हाँ। तो फिर हमें सच्चा दर्शन होता है कि नहीं, इसका आंसर?
हाँ, यानी उस हिसाब से हमारे दर्शन सच्चे तब तक नहीं है जब तक हमने पाया नहीं है, लेकिन हम अभी जाते हैं तो पाने के लिए जाते हैं कि अपने भावों में शुद्धि आए, बाह्य में पंच परमेश्वर और अंतरंग में अपना खुद का आत्मा, वो ही अभी तो हितकारी है जब हमने पाया नहीं है सम्यक दर्शन तब तक।
बराबर बराबर। तो यदि मैं जब तक सम्यक ना हो भगवान के पास ये सोच कर जाऊं कि भगवान मुझे सम्यक हो जाए तो मुझे सम्यक होगा?
नहीं नहीं, वैसे इंटेंशन से नहीं, लेकिन आपने जो पाया उससे मुझे प्रेरणा, वो ही मेरे में ही उतनी प्रेरणा जगनी है कि मैं भी वैसा ही पाऊं।
बराबर, ओके, ठीक है। और किसी का कोई और ओपिनियन? इनका ये कहना है कि सम्यक दृष्टि ने तो साक्षात उस तत्व को पा लिया है, तो उसको महिमा आती है, क्योंकि भगवान धन्य हो आपने मुझे सच्चा सुख का मार्ग बता दिया, राइट? लेकिन अभी मुझे सम्यक नहीं हुआ है तो मैं भगवान के पास क्यों जाता हूँ? क्योंकि हे भगवान, आपने वो तत्व पाया है, मैं भी उस तत्व को पा लूं, इसलिए मैं भगवान के पास जाता हूँ, राइट? आप यही बोल रहे हो? हाँ। तो नाउ माय क्वेश्चन इज कि भगवान के पास हम ऐसे जा रहे हैं कि मैं भगवान आपने पा लिया है, मैंने नहीं पाया है, तो मेरा क्वेश्चन वही है कि क्या ये सच्चा दर्शन है?
क्या ये मिथ्या दर्शन है वो पूछ रहे हो आप?
नो नो नो, नहीं, मिथ्या दर्शन तो तब होगा जब हमें ये लगेगा कि भगवान के दर्शन से सम्यक हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, भगवान के दर्शन से शुभ भाव होते हैं कि नहीं होते?
हाँ, वो तो शुभ भाव की क्रिया है ना वैसे तो।
हाँ, भगवान का दर्शन शुभ भाव की क्रिया है, बराबर। तो भगवान के दर्शन से सम्यक तो होता है कि नहीं होता? भगवान मुझे सम्यक तो देते हैं कि नहीं देते?
हाँ, अगर दृष्टि बाहर ही है तो सम्यक तो नहीं होगा, लेकिन
नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, हाँ। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, भगवान हमें सम्यक देते हैं कि नहीं देते?
नहीं नहीं,
भगवान हमें क्या देते हैं?
प्रेरणा दे सकते हैं वो, और कुछ नहीं देते।
मार्ग बताते हैं।
भगवान हमें क्या देते हैं?
मार्ग बताते हैं,
मार्गदर्शन।
नहीं, मंदिर में जो भगवान अभी बैठे हैं उनकी प्रतिमा जी है, तो वो क्या देते हैं?
हाँ, वो कुछ नहीं, वो तो वितराग हो गए, वो कुछ नहीं दे सकते हमें।
बराबर, हमारे भगवान कुछ भी नहीं देते। तो सबसे पहली बात तो यदि हमारे मन में कभी भी भगवान के दर्शन करते हुए इतना सा भी भाव आए कि हे भगवान मेरे ये अनुकूलता हो जाए, हे भगवान मुझे सम्यक्त्व हो जाए, या हे भगवान मैं सुखी हो जाऊं, हाँ यदि भगवान के सामने कभी भी ऐसा याचना करी यानी मांगा हमने भगवान से, तो उसी टाइम आपको पता है हमको किसका दोष लगता है? कोई बता सकता है? मिथ्यात्व कितने प्रकार के होते हैं?
पांच प्रकार के।
दो प्रकार के होते हैं, नहीं, दो प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं मूल, एक ग्रहित मिथ्यात्व और एक ग्रहित मिथ्यास और अग्रहित मिथ्यास। ग्रहित मिथ्यास यानी
जो इस भव में हमने ग्रहण किया है,
जो हमने ग्रहित यानी ग्रहण किया है, यानी कि जो सच्चे देव सच्चे शास्त्र सच्चे गुरु को छोड़कर अन्य देव शास्त्र गुरु जो यानी कुदेव को शास्त्र कुश गुरु के श्रद्धान पूर्वक जो मिथ्यास यानी कि वो वाले देव मेरे हितकारी, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रहित मिथ्यास। और अग्रहित मिथ्यास जो हमारे साथ अनादि से है कि ये देह मेरी है और हमें जो अपने यानी जो सहयोग मुझे मिलते हैं मैं उसी में हो जाता हूँ, तो वो हो गया अग्रहित मिथ्यास, राइट। अब यदि आप भगवान के, तो अभी हमारे पास ग्रहित मिथ्यास है कि अग्रहित मिथ्यास है?
अग्रहित
दोनों है,
दोनों
अग्रहित मिथ्यास दोनों कैसे है? हम देवशास्त्र गुरु, हम कुदेव को शास्त्र गुरु को मानते हैं?
नहीं नहीं,
हाँ के ना नहीं, नहीं। ग्रहित मिथ्यास में कहता है कि गुरु कुदेव को शास्त्र को मानना अग्रहित ग्रहित मिथ्यास है। दो मिनट, सबको समझ में आया ग्रहित मिथ्यास किसे कहते हैं?
हाँ
जी।
मैं एक और बार समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, एक तो सच्चे देव होते हैं भगवान, और एक वो जो भगवान नहीं होते और उनमें भगवान की कल्पना की जाती है, ओके। यानी जो सुखी है नहीं, उसको हमने फालतू में ही सुखी बना दिया। तो जो जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य देवों को मानता है, अर्थात ये समझता है कि वे सुखी है और वो मुझे सुख देंगे, वो जीव को कहते हैं ग्रहित मिथ्या दृष्टि। यानी कि पहले तो उसने ये मान रखा था कि ये देह में हूं, तो पहला मिथ्यात्व तो वो, अब उसने ऊपर से एक और मिथ्यात्व ये बना लिया कि ये वाला जो है ना ये भी सुखी है और ये मुझे सुखी बना देंगे, तो मिथ्यात्व के ऊपर नया मिथ्यात्व क्रिएट किया, तो इसको बोलते हैं ग्रहित मिथ्यात्व। क्लियर? ओके, तो माय क्वेश्चन इज कि हमें ग्रहित मिथ्यात्व है क्या?
नहीं।
बाकी सबको है?
नहीं, नहीं है।
बोलिए ना, जिसको नहीं है वो तो बोलो।
नहीं है।
हाँ पे
हाँ बोलिए।
एक जो हमारे लाइफ में डे टू डे लाइफ में बहुत ही आई मीन कॉमन है ये चीज कि हमें यू नो वी कम अक्रॉस दिस थिंग मेनी टाइम्स, उस टाइम पे यू नो अपनी विवेक बुद्धि से जो निर्णय लेना चाहिए उसके अनुसार से ये क्वेश्चन है कि क्या होना चाहिए। हम यहाँ पे कई बार सभी मंदिरों के परिचय में आते हैं यहाँ पे, जहाँ पे लाइक यूएस में कहीं पे श्वेतांबर मंदिर, दिगंबर मंदिर, मोस्टली तो एक ही मंदिर में होते हैं सभी प्रतिमाएं, तो उस टाइम पे हमें श्वेतांबर प्रतिमा भी होती है, दिगंबर प्रतिमा भी होती है, तो उस टाइम पे क्या अगर ये ग्रहित मिथ्यात्व कहलाएगा इफ वी बो डाउन टू श्वेतांबर प्रतिमा, अगर श्वेतांबर प्रतिमा जी हैं उसके सामने, और उसके सामने हमारे भाव की शुद्धता के लिए हम अपने बैठ जाएं और ध्यान करें और ऐसा कुछ भी जो हम दर्शन करें उनका, तो वो क्या ग्रहित मिथ्यात्व हो जाएगा?
दो मिनट, हम उसको डिस्कस करते हैं। हम समझते हैं ग्रहित मिथ्यात्व एक्चुअली है क्या। पहले ये बताइए हम सभी ग्रहित मिथ्यात्व दृष्टि है कि नहीं है, मैं उसी पॉइंट पर आता हूँ, दो मिनट सिर्फ।
ओके
प्लीज मुझे बताइए कि हम ग्रहित मिथ्यात्व दृष्टि है कि नहीं है। क्या हम कुदेव को मानते हैं? हाँ के ना?
नहीं
नहीं
नहीं मानते, सब लोग नहीं मानते हैं, राइट। किसी को कोई किसी को कोई लगता है क्या कि वो कोई और सुखी कर देगा अरिहंत देव के अलावा?
नहीं।
तो हमें पक्का सबको यही लगता है कि हमें सिर्फ अरिहंत देव सुखी कर सकते हैं?
हाँ
हाँ जी।
हाँ
यस
और नो?
हाँ यस
बराबर।
हाँ
तो बस यही ग्रहित मिथ्यात्व है। मुझे अरिहंत देव सुखी कर सकते हैं, ये ग्रहित मिथ्यात्व है।
हमारी अभी बात तो क्लियर हो गई कि वो कुछ दे नहीं सकते हमें।
नहीं नहीं तो जी, कुदेव और सुदेव के बीच में हमारी बातें चल रही थी। आपकी बात बराबर है कि अपने भी प्रतिमा से हम बावदान होते तो उससे हम हैप्पी नहीं होने वाले, लेकिन अभी डिफरेंसेस हो रहा था कि कुदेव या वितरागी देव से हम हैप्पी होंगे कि नहीं, वो उसकी बात चल रही।
हाँ हाँ दो मिनट, दो मिनट में वही बताता हूँ। अब मेरा इनिशियल क्वेश्चन था कि यदि हम भगवान के पास जाते हैं अपने वीतरागी देव के पास और हम ये सोचते हैं कि मेरा अच्छा हो जाए, तो आपको पता है इससे ग्रहित मिथ्यात्व का दोष लगता है? सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने जाकर उनसे अपने हित की वांछा करना कि आप मुझे अच्छा करोगे, आपके दर्शन से मुझे पुण्य बंध हो जाए। देखिए, दर्शन करोगे तो पुण्य बंध अपने आप होगा, लेकिन जहाँ पर इसलिए दर्शन किया कि मुझे अच्छा पुण्य बंध है, यहाँ पर आपको सच्चे देव में कुदेव की आपने कल्पना करी और आपको कुदेव को पूजने बराबर पाप लगेगा।
बराबर है,
ये हमारे तो, चरणानियों के ग्रंथों में एक्सप्लिसिटली उन्होंने एकदम ये बोल रखा है कि वीतरागी देव से यदि आप कुछ याचना करते हो तो फिर क्या डिफरेंस रहा, आप कुदेव के पास जाते हो उनसे भी बोल दो कि मुझे बहुत पैसा हो जाए या मुझे ये हो जाए मुझे वो हो जाए, आप हमारे भगवान से बोल रहे हो, डिफरेंस क्या रहा? आप रहे तो वो ही मांगने वाले, तो भगवान से तो इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व ये नहीं है कि कुदेव को पूजना या सुदेव को पूजना, ग्रहित मिथ्यात्व ये है कि किसी में किसी अन्य चीज की कल्पना करना। अब सचिन जी आपका क्वेश्चन, तो अब आपका क्वेश्चन, अब आप ये बोल रहे हो कि अब सामने हमारे श्वेतांबरों वाली प्रतिमा है और दिगंबर वाली प्रतिमा है और हम श्वेतांबर वाली प्रतिमा को यदि नमस्कार करते हैं, इफ वी बो डाउन टू श्वेतांबर वाली प्रतिमा, तो उससे ग्रहित मिथ्यात्व का दोष लगेगा कि नहीं? राइट
राइट
राइट। आपको पता है गुरुदेव श्री ने परिवर्तन क्यों किया?
हाँ जी,
आई नो दिस इज अ काइंड ऑफ सेंसिटिव क्वेश्चन, मुझे पता है।
नहीं, सेंसिटिव नहीं, एकदम नॉर्मल है। यदि आप कहीं जा रहे हो, लाइक हाँ, यदि आप श्वेतांबर मंदिर गए और यदि आपके साथ कोई फ्रेंड भी जा रहा है और फिर उसके सामने वो बोर्ड डाउन कर आप नहीं करते, वो कभी ऑड भी लगता है, राइट? ऐसा भी बनता है क्या सिचुएशन? ऐसा यहाँ पर होता है कई बार, लाइक किसी के फ्रेंड जाते हैं और वो लोग उनके मंदिर जाते हैं और दूसरा, लाइक यदि मैं गया वो मुझे भी बुलाते और यदि मैं अंदर नहीं गया तो ऑड लगता है, राइट? ओके, लेकिन यदि हम अपने शास्त्रों के हिसाब से जाएं, तो शास्त्रों में जिन मंदिर में आप शास्त्रों में क्या लिखा है वो सुनिए, जिन मंदिर में, यानी कि हमारा जो सच्चा मंदिर है, सच्चा दिगंबर जैन मंदिर, जिन मंदिर में यदि गुरु का वास हो उस जिन मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए। इसका रीजन क्या दिया उन्होंने कि यदि आपने छेड़ाला पढ़ी हो तो एक लाइन आती है, ते कुगुरु जन्म जन उपल नाव, आई मीन इस संसार में जो कुगुरु है वो कैसे है, पत्थर की नाव के समान है कि वो हमेशा डुबाने ही वाले हैं। तो यदि कोई जीव, यदि हम चले गए अपने मंदिर और वहां पर नहीं पता था कुगुरु है और हमने उनको सुगुरु मानकर वहां पर बैठ गए और उन्होंने जो बोला वो मैंने मान लिया, तो मेरा तो पूरा भव चला गया, जो सही नहीं था मैंने वो उल्टा मान लिया, सच सही है कि नहीं है? आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कुगुरु के पास जाने से मिथ्यात्व के बढ़ने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, इसलिए कुगुरु के जहाँ जाने का बिल्कुल निषेध किया है। लेकिन यदि आप जिनेन्द्र, जैसे अमेरिका में पॉसिबल नहीं है, तो अब मैं शास्त्रों की भाषा में बोलूं तो श्वेतांबर मूर्ति के सामने नमस्कार तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ दिगंबर भगवान का ही नमस्कार होगा, नहीं तो उससे तीव्र दिगंबर भगवान की अभिनय का प्लस ग्रहित मिथ्यात्व का दोष है। आपका डाउट जेन्युइन है कि यदि उनके सामने बैठकर यदि मैं अपना थोड़े अपने भगवान को याद कर लूं, ये करूं वो करूं, नहीं ऐसा हमारे जैन धर्म परमिट नहीं करता है।
तो पंडित जी, वैसे कहा जाए तो अभी हमारे सभी में दोनों ही मिथ्यात्व चल रहे हैं, क्योंकि वो सच्चा दर्शन हाँ, तो समय दृष्टि को ही है, तो फिर उससे
बराबर है, बराबर है, बराबर है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन अभी भी मोटा मोटा जो ग्रहित मिथ्यात्व उसे तो कम कर सकते हैं, लेकिन हमारी फिर भी कई मान्यताएं ऐसी हैं कि हमें ग्रहित मिथ्यात्व में है। फिर भी हम भगवान का सच्चा स्वरूप जाने तो हमारी आधी उल्टी मान्यताएं तो वहीं खत्म हो जाती है। भगवान हमारे कैसे हैं? वीतरागी हैं, राइट? मैंने दिया की क्लास में एक स्टोरी स्टार्ट की है, धन्य कुमार की स्टोरी है। ओके, ये हमारे धन्य कुमार पौराणिक पुरुष हुए हैं। आप लोगों ने कभी सुना है क्या धन्य कुमार का? कुछ कहानी है धन्य कुमार की? किसी ने सुना है कभी? नहीं सुना। ओके, यदि आप लोगों को कहीं से मिले तो पढ़िएगा, नहीं तो फिर मैं आपको सुनाऊंगा। उस कहानी को पढ़कर आपको पता पड़ेगा कि जैन धर्म का एक्चुअल स्वरूप क्या है। आप ये बताइए कि आप दिन भर इतने सारे काम करते हो, आपके काम आपके करने से होता है क्या?
नहीं।
आपने लाइक मेरा आज एग्जाम खत्म हुआ, ठीक है, मेरा आज एग्जाम था, तो मैंने बहुत सारी पढ़ाई करी। अब बताइए मेरा एग्जाम में जो मैं 2 घंटे बैठूंगा और मैं वहाँ एग्जाम दूंगा, क्या वो मेरी पढ़ाई पर डिपेंडेंट है? यस और नो?
आपकी पढ़ाई पे नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे डिपेंडेंट है।
नहीं, वो मेरी पढ़ाई और पढ़ाई पे क्या डिफरेंस हुआ? आई मीन मुझे जितना आता है उस पर डिपेंडेंट है कि नहीं है? मैं एग्जांपल दिया, मुझे पूरा आता है, नाउ आई एम अटेम्प्टिंग, मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूँ, नाउ मेरा अटेम्प्ट करना मेरे आने पर डिपेंडेंट है कि नहीं है?
स्थूल रीते है, स्थूल से है, लेकिन अंदर से तो नहीं है, क्योंकि वो जो टाइम पे होने वाला था वही आपने भाषा वर्णा से आपने शब्दों को लिखा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के बिना तो आप सवाल भी नहीं समझ सकते। हम कोई नहीं, आप क्या, हम भी नहीं सवाल समझ सकते ना।
एक्सीलेंट, वही, लेकिन जैन फिलोसफी ये कहती है कि आपके पूर्व का ज्ञान आपके वर्तमान के ज्ञान में बिल्कुल भी निमित नहीं है। प्लस आपने एग्जाम में जो लिखा और जो आपका बाद में रिजल्ट आएगा उसमें कुछ क्या है, कोई रिलेशन? मेरे एग्जाम के लिखने में और मेरे रिजल्ट आने में कुछ वो है क्या, रिलेशन?
नहीं होगा।
यस और नो?
नो।
आपका रिजल्ट, देखिए, संसार में कभी भी पुरुषार्थ से कार्य नहीं होता। आपको ये लगता है कि आप अपनी जॉब पर बहुत मेहनत करते हो, वेरी गुड, आप मेहनत करते हो, लेकिन आप अपने मिथ्यात्व के कारण मेहनत कर रहे हो। आपको ये लगता है कि आपके करने से अच्छा काम हो रहा है या बुरा काम हो रहा है, लेकिन संसार में सिर्फ और सिर्फ पुण्य और पाप के उदय से कार्य होता है और किसी कोई दूसरे के कार्य से नहीं होता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अधिकार पंडित तोरणदल जी क्या कहते हैं वहां पर कि ये जीव इस संसार में पुरुषार्थ चलाता है, लेकिन ये नहीं समझता कि इस संसार में पुरुषार्थ से बिल्कुल भी कार्य नहीं होता। और क्या समझता है कि धर्म में मैं भगवान के दर्शन करूं, मुझे पुण्य बंधे तो मेरा काम हो जाए, तो वहां ये नहीं समझता कि धर्म मार्ग में पुण्य से कार्य नहीं होता। देखिए, हमारा मिथ्यात्व एकदम सही तरीके से चलता है। हम ये समझते संसार में मैं पुरुषार्थ करूंगा तो अच्छा होगा और धर्म में मैंने पूजन कर ली, शुभ काम कर ली तो पुण्य से हो जाएगा। एकदम अपोजिट होता है। पुरुषार्थ सिर्फ अपने आत्मा में चलता है, इसलिए धर्म मार्ग में पुरुषार्थ लगता है, और बाहर के किसी भी द्रव्य में आपका पुरुषार्थ चल नहीं सकता, इसलिए कार्य सिर्फ आपके पुण्य और पाप पर डिपेंडेंट है। इस कारण हम जितना भी सोचें, जितना भी अपना सिर मारें किसी चीज पर, लेकिन संसार की एक वस्तु संसार पर पुरुषार्थ करने से नहीं हिलती, वो अपने पुण्य के अधीन होती है। और यदि मैं ये सोचूं कि भगवान के दर्शन करके पुण्य होगा, पुण्य से मुझे बाद में सम्यक्त हो जाएगा, इसलिए मुझे डेली दर्शन करने चाहिए, तो ऐसे से भी सम्यक्त होने वाला नहीं। बिना पुरुषार्थ के धर्म में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हम। ऐसा पंडित टोडरमल जी ने 9वें अधिकार में एकदम क्लियरली बोला है और 3रे अधिकार के अंत में भी। आई गेस हमारा टाइम हो गया।
हाँ नहीं, बहुत बढ़िया एंगल मिला, बहुत बढ़िया एंगल मिला इससे जो आपने अभी बात।
एक बार आप विचार कीजिएगा। हाँ वो ये वाली बात है कि एक बार आप विचार कीजिएगा कि आप लाइक डेली आप लोग एक ही जैसा रोटी बनाते हो, ठीक है, आप अभी रोटी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, डिश दाल बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, हमेशा उसका एक सा टेस्ट क्यों नहीं आता? लाइक आपने आज जो दाल बनाई वैसे उसका टेस्ट कल आएगा, वैसे का वैसे ही?
नहीं,
क्यों नहीं आ रहा है? आप ही तो बना रहे हो, आप उतनी क्वांटिटी ले रहे हो, आप वैसे ही कर रहे हो, क्यों नहीं आ रहा है फिर भी टेस्ट?
क्योंकि हम नहीं बना रहे, वो सबका खुद से ही बन रही है सब, इसमें जो जो भी है जिसका भी
देखिए कॉम्बिनेशन है सबका। आज यदि मेरा पुण्य का उदय है कि मुझे टेस्टी खाना खाने को मिलेगा तो दाल अपने आप टेस्टी बनेगी, और यदि आज मुझे टेस्टी नहीं खाना है तो दाल या जल जाएगी या कुछ भी हो जाएगा। ये एकदम प्रैक्टिकल है, लाइक जॉब में आप किसी भी चीज में लगा के देखिएगा, आप हमेशा वैसे ही करते हो लेकिन उसके रिजल्ट हमेशा डिफरेंट आते हैं। तो जब एक चीज यदि हम मशीन में डालते हैं तो दूसरी चीज वहां पर जो निकलना है वही निकलती है, आउटकम हमेशा सेम होना चाहिए, सेम इनपुट है, बट क्यों नहीं होता? बिकॉज संसार में सारे कार्य पुण्य के अधीन है। यदि आप मानते हो आपके करने से कुछ हो रहा है तो यही आपका मिथ्यात्व है। हमारे भगवान वीतरागी इसलिए हुए क्योंकि संसार में करने से कुछ नहीं होता, नहीं तो हमारे भगवान के पास बल इतना सारा है कि वो इस तीन लोग को अपने अंगूठे पर, उनका बल का जो वर्णन आता है, वो अपने अंगूठे हथेली पर इस तीन लोग को घुमा सकते हैं, इतना, यानी कि कहने का एक वो है शैली है कि इतना सारा बल होता है, लेकिन क्यों नहीं करते कुछ? वैराग्य भावना में बहुत अच्छी लाइन आती है, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। यदि इस संसार में कुछ करने से सुख हो जाता तो हमारे तीर्थंकरों से, सबसे पहले तो तीर्थंकरों का पुण्य देखिए आप, सबसे पुण्यशाली जिनके जन्म के 15 महीने पहले ही इतने रत्नों की वर्षा हो रही है, ताकि जिनके जन्म पर उधर पर उस एरिया में कोई गरीब इंसान ना बचे, जिनके जन्म पर सौधर्म इंद्र स्वयं आते हैं, जिनके दीक्षा कल्याणक पर लोकांतिक देव आते हैं, और जिनके केवल ज्ञान के बाद जिनकी कुबेर स्वयं समोशरण की चर्चा रचना करते हैं और 12 सभाएं लगती हैं, और उस 12 सभाओं को कई लोग तो मात्र माणिकतम के दर्शन करने से सम्यक को पा जाते हैं। उन महान पुण्यशाली तीर्थंकरों के कुछ करने से इस जहां पर कुछ नहीं होता, इस जगत में कुछ नहीं होता, तो यदि मैं ये सोचूं कि मैं इस कार्य को कर दूं तो ये मेरा मिथ्यात्व की चरम नहीं है क्या? यानी कि तो हाई थे मेरे मिथ्यात्व की से, यानी कि मैं तीर्थंकर की ताकत कर रहा हूं कि आप कुछ नहीं कर पाए तो क्या मैं करके दिखाता हूं? तो मेन मिथ्यात्व है वो यहीं पर है, मैं कुछ कर सकता हूं, जहां कर सकता हूं वहां करते नहीं है, और जहां पर नहीं कर सकते वहां पर व्यर्थ पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए अनादिकाल से अभी तक भटक रहे हैं। और यदि अभी भी इस सच्चे तत्व को पाकर भी नहीं समझे तो आगे भटकते रहेंगे। तो हमको ये निर्णय करना है कि सच क्या है, सम्यक्त्व किसका नाम है और मिथ्यात्व किसका नाम है। ग्रहित अग्रहित की बात नहीं, लेकिन सच्ची बात क्या है, जब तक उसका निर्णय नहीं होगा तब तक हम सुख के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम सभी इसका निर्णय करें कि हम जैन हैं तो क्यों हैं, और हमें सुखी होना है तो क्यों होना है, और हम सभी सुख के लिए आगे बढ़े। इसी मंगल भावना से आज का सेशन कंक्लूड करते हैं।
बहुत बढ़िया रहा अनुभव जी।
अनुभव जी, एक के पास अगर,
हाँ हाँ बोलिए,
अगर आपके पास 2 मिनट हुए तो आपने,
हाँ बिल्कुल,
आपने बोला था कि गुरुदेव श्री के परिवर्तन के बाबत में, तो जरा बोल सकते हैं उसके बाबत में?
यस, वो आपका प्रश्न था कि हम सामने भी कोई अन्य देव विराजमान है जो इंद्र देव नहीं है, ओके, तो हम उनके दर्शन करें कि नहीं करें। तो मेरा जो प्रश्न ये था कि गुरुदेव श्री को समय सार तो जब वे स्थानक वासी में थे तभी मिल गया था, राइट? वो समय सार का वो श्वेतांबरों की भी सभा में स्वाध्याय कराते थे, राइट? और श्वेतांबरों ने ये भी बोला था कि आप बस धर्म चेंज मत करो, आपको जो स्वाध्याय कराना और जो पढ़ना हो पढ़ो, ये भी बोल दिया था उनको, उनके समय सार पढ़ने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको ये प्रॉब्लम थी कि यदि हमारा धर्म चेंज करेंगे तो हमारे धर्म की यानी कि लोग और कितने प्रभावित होंगे कि हमारा धर्म सही है या गलत है। तो फिर भी गुरुदेव श्री ने चेंज क्यों किया, क्योंकि आपके अंदर में जितनी भी शुद्धता हो, जब तक कुगुरु के सानिध्य में कुगुरु के वेश में हो आप, यानी कि कुगुरु के यदि आप वो मानते हो, तब तक मिथ्यात्व नहीं जा सकता। गुरुदेव श्री को सम्यक्त्व भी श्वेतांबर दशा में नहीं हुआ था। तो इसलिए कुगुरु के, जब तक कुगुरु का वेश है या कुगुरु को आप जब तक उनका, यानी कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है आप एकदम सच मानते हो, लेकिन गुरुदेव श्री यदि मुख पट्टी लगाए रहते तो उनको देखकर और लोग भी बोलते कि हाँ मुख पे पट्टी लगाना अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपने किया क्या, आपने एक कुमत का ही पोषण किया ना, आपने उसकी पब्लिसिटी करी, तो फिर आपने ना तो अपना अकेली का मिथ्यात्व बढ़ाया बल्कि और लोगों को भी उस मिथ्यात्व के मार्ग के लिए अग्रसर किया कि हाँ ये सच्चा पंथ है। इसके लिए कुदेव के सानिध्य पर रहकर कभी भी सम्यक्त्व नहीं होता है। वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे हमारे प्रथमान युग में बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये तो गुरुदेव श्री का प्रेजेंट का एग्जाम्पल है। पहले भी ऐसे बहुत सारी कहानियां यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी कहानियां हैं कि यदि मैं कुदेव को पूछता हूँ तो क्या तब भी मैं सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकते। क्लियर?
हेलो अनुभव जी, एक सवाल है
आपके पास। हाँ हाँ बोलिए।
आई नो लेट हो गया, लेकिन भैया आपने दो सेशन पहले एक बार जो सेशन लिया था उसमें बताया थे कि अभी भी संकीति गुरु है, तो वो मैं और हिनाबेन सोच रहे थे कि कौन है कौन है, लेकिन हमें कुछ जवाब नहीं मिला, आप बता सके प्लीज।
नहीं एक्चुअली जो हमारे कर्णा न्यूज में आता है वो ये आता है कि अधिकतम पांचवे काल के अंत तक इतने भावलिंगी संत रहेंगे, ऐसा हमारे उसमें आता है ग्रंथों में। इसके लिए ये कहा जाता है कि अभी भी भावलिंगी संत कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन अभी कहाँ है ये अभी नहीं पता, होते तो दर्शन करने के लिए नहीं चले जाते।
लेकिन भरत क्षेत्र में तो नहीं होंगे, मे भी वह दूसरे क्षेत्र में होंगे, महाविद्या क्षेत्र या कहाँ भी, लेकिन
पंचम काल
महाविद्या में तो हमेशा ही रहते हैं,
वहाँ तो
ऐरावत क्षेत्र भरत क्षेत्र में ही हो सकते, तो विदेह क्षेत्र में तो हमेशा ही रहते हैं। अभी भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में, तो भरत क्षेत्र में यदि आपको एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो मैं आपको पूछ कर बताता हूँ, हमारे ग्रंथों में आया है वैसे।
बहुत बढ़िया,
हाँ हाँ बता, मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल, हाँ। पूछ कर आपको अपने सेशन में बताता हूँ बिल्कुल।
हाँ जी
ओके,
बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया रहा अनुभव जी, आपने अपने एग्जाम से ऐसे बताई, अभी भी आज ही आपके एग्जाम से ओवर हुई और आज ही हमें बड़े अच्छे संयोग बने कि हमें आपका लाभ मिला, अदरवाइज आपके एग्जाम चल रही होती तो।
अरे नहीं ठीक है ठीक है।
हाँ और स्तुति ले
लें, आपके सेशन बहुत इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं अनुभव जी, थैंक
यू। देखिए हम लोगों को मंगलायतन में क्या बताया जाता था कि जब भी हम कुछ जिनवाणी पढ़ते हैं तो हम उसको ऑन द फेस वैल्यू नहीं लेना चाहिए कि हाँ ये लिखा है तो ये है, हम यदि अभी देखेंगे तो हमको पता पड़ेगा कि हाँ हमारा जैनिज्म कितना प्रैक्टिकल है। एक एक चीज आप यदि बिठाएंगे क्रमबद्ध पर्याय से लेकर शरीर और जीव की भिन्नता की बात, किसी भी बात को आप देखेंगे तो यदि आप खुद करके देखेंगे तो आपको और ज्यादा दृढ़ता आएगी और इंटरेस्ट बनेगा और फिर शायद हम समय के लिए और अच्छा पुरुषार्थ कर पाए। तो मैं यही बोलूंगा कि यदि हम सभी जब भी आगे से पढ़ें कुछ भी तो जस्ट क्वेश्चन करिए अपने आप से कि ये होता है तो क्या ये है, तो अपने आप वो और अच्छे से समझ में आएगा। उसका हम लोगों को लैटिन में ऐसे बताया जाता था कि उसको ऐसे सोचना चाहिए। चलिए ठीक है, जुनवाई स्तुति करते हैं।
आप ही ले लीजिए अनुभव जी।
नहीं नहीं आप लोग लीजिए, आप लोग जो सब साथ में पढ़ते हैं।
अभी तो जो मेन एंकर है वो नहीं है आज हमारे साथ हमेशा, लेकिन फिर भी अगर मनीषा बहन आप बोल दे तो।
एक्चुअली प्रतीक यही बालबोध पाठमाला 2 में है, मिथ्यातम नाश्वे को, वी कैन टेक दैट।
ओके
हाँ एक्चुअली लेसन नंबर 6 आप सब
ने हाँ मैंने सबको भेजी थी बालबोध पाठमाला 2।
अच्छा
इफ एवरीबॉडी कैन पुल इट आउट, उसमें पेज नंबर भी मैंने शायद भेजा था 31,
पेज नंबर 33 है और 39 है।
Okay, okay.
आप शुरू कीजिए प्लीज, तो हम साथ में दोहराएंगे। मिथ्यातम नाश्वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को भानु
की खानी है, छो द्रव्य जान वे को परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वे को
जीव के जताए वे
जताए वे को काहू न सकाए वे को
भव्य उर आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार को यही जीनी
पानी
के जिनकी बात जपोती धरे ज्योति शरणा कहे तो पावे सुख चैन
सो वाणी मस्त
तुझे जो कालो तो वाणी मस्तक नमो सदा के तुझो। नौ बार नमः का मंत्र।
Okay.